ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इत्तदायलाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो। बंसी विभूषित करान नवनीर दाभात पीतांबराद अरुण बिंब फलाद रोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखात दरविंद्र नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। बर्हापीडं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवास कनक कपिशं वैजन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणु अधर सुधया पूरयन् गोप वृन्दै वृन्दारण्यं स्वपद रमणं प्राविशत गीत कीर्ति। हरे कृष्णा। तो आप सभी का इस दैनिक श्रीमद् भागवतम कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आपके चरणारविंदों में कोटिश नमन करते हुए प्रार्थना करूंगा कि आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें जिससे हम इस अमल पुराण के विषय में अपनी वाणी का प्रयोग कर सकें। आइए आज के श्लोक की तरफ चलते हैं। आज का श्लोक स्कंद 7 अध्याय 13 श्लोक संख्या 6। श्लोक संख्या 6 अध्याय 13 स्कंद क्लियर है ये है? पाठांतर कुछ है। नाभिनंदी ध्रुवं मृत्यु मध्रुवं वास्य जीवितं कालं परं प्रतीक्षेत भूतानां प्रवाप्ययम् न नहीं अभिनंदित प्रशंसा करें ध्रुवं निश्चित ध्रुव मृत्यु मृत्यु अध्रुवम अनिश्चित वा अथवा अस्य इस शरीर की जीवितम उम्र कालम शाश्वत समय परम परम प्रतीक्षेत अवलोकन करें भूतानाम जीवों का प्रभव प्राकट्य अपयम अंतर्ध्यान होना। अनुवाद शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। चूंकि भौतिक शरीर बिना भौतिक शरीर का विनाश निश्चित है और मनुष्य की आयु स्थिर नहीं है, अतएव न तो मृत्यु की न ही जीवन की प्रशंसा की जानी चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को नित्य काल का अवलोकन करना चाहिए, जिसमें जीव अपने आप को प्रकट करता है और अंतर्ध्यान होता है। तात्य पर शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। इस भौतिक जगत में सारे जीव न केवल वर्तमान काल में अपितु भूतकाल में भी जन्म तथा मृत्यु की समस्या का हल निकालने का प्रयास करते रहे हैं। कुछ लोग मृत्यु पर बल देते हैं और प्रत्येक वस्तु को भ्रम बताते हैं, जबकि अन्य लोग जीवन पर बल देते हैं और इसे अक्षुण्ण तौर पर सुरक्षित रखकर यथाशक्ति भोग करना चाहते हैं। ये दोनों प्रकार के लोग मूर्ख तथा मूढ़ हैं। यह मंत्रणा दी जाती है कि मनुष्य शाश्वत काल का अवलोकन करे और भौतिक शरीर के प्राकट्य तथा अंतर्धान का कारण है और इस शाश्वत काल में जीव के बंधन को देखे। अतएव शिल भक्ति विनोद ठाकुर ने अपनी गीतावली में गाया है, अनादि कर्म फले पड़ी भवार्णव जले तरिवारे ना देखी उपाय। मनुष्य को शाश्वत काल की गतिविधियों का अवलोकन करना चाहिए, क्योंकि यही जन्म मृत्यु का कारण है। वर्तमान युग की सृष्टि के पूर्व सारे जीव काल के अधीन थे। काल के ही अंतर्गत यह भौतिक जगत उत्पन्न होता है और पुनः विनष्ट हो जाता है। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, काल के वशीभूत होकर जीव जन्म जन्मांतर प्रकट होते तथा मरते हैं। यह काल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की निराकार अभिव्यक्ति है, जो भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध जीवों को भगवान की शरण में जाकर उससे उबरने का अवसर प्रदान करती है। शिला प्रभुपाद की। ओम अज्ञान तिमिरान दृश्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंभूतं कदाभीं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरो श्री उत्पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवान् च श्री रूपं साधयामि। हरे कृष्ण। तो आज का जो श्लोक है बहुत ही सुंदर श्लोक है। राशि यज्ञ में युधिष्ठिर महाराज विराजमान हैं। राशि यज्ञ हुआ, शिशुपाल के वध का उपक्रम हुआ, शिशुपाल की ज्योति निकल करके भगवान में विराजमान हुई। इस दृश्य को देखा और भगवान के विषय में भी बहुत सारी बातें युधिष्ठिर महाराज ने कही हैं। युधिष्ठिर महाराज साक्षात धर्म हैं, धर्मराज हैं, और युधिष्ठिर महाराज को धर्मराज को संतों की दो दो बार कृपा का अवसर प्राप्त हुआ है। समा प्रिया सुरदा ब्रह्मन भूता नाम भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान बधित विषमो यथा, भगवान तो सम हैं, प्रिय हैं, सभी प्राणियों के सुहृदय हैं, भूतानाम समस्त प्राणियों के। ब्रह्मन कथित कैसे इंद्रस्यार्थे, इंद्र का पक्ष लेते हुए दिखाई दे करके असुरों का वध विषम अवस्था में करते हुए नजर आते हैं। भगवान हर अवस्था में सम हैं, और इतनी सुंदर युक्तियों का यहां पर वर्णन हुआ है। कामात द्वेषात भयात स्नेहात यथा भक्तेश्वरे नरे आवेश तद अघम हित्वा सर्वम पापम गतिम गता। गोप्या कामात भयात कंस द्वेषात चेद्या देव नृप संबंधात वृष्णया स्नेहात एवं भक्त्या वयम विभो। भगवान के विषय में जो व्यक्ति जान जाए, समझ जाए, और मानव जीवन में ही समझना है, और कोई दूसरा जीवन तो उपलब्ध है नहीं, है मानव जीवन ही है। मानव जीवन के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्या वह इसी जीवन में और अभी तुरंत शास्त्रों के सिद्धांतों को तो क्लियर कर ले, करना उसे बहुत बड़ी यात्रा है। और आप चौराहे पर पड़े हुए हो, और चौराहे पर भी खड़े होकर के ये विचार कर रहे हो कि मुझे कौन से मार्ग से जाना है, तो बहुत दुर्गति को प्राप्त हो गए। हमारे पास निर्णय होना चाहिए था कि हमें इसी मार्ग पर जाना है। हम कैसे निर्णय कर पाते क्या मुझे इसी मार्ग पर जाना है? चौराहे पर खड़े हैं, मुझे किस मार्ग पर जाना है? ये मार्ग भी बहुत बढ़िया है, अरे कितनी चौड़ी सुंदर रोड है, हमें इस पे जाना चाहिए, इस पे जाना, कैसे निर्णय कर पाते? इसके लिए एक विशेष बात आ जाती है, व्यक्ति के बस में नहीं है निर्णय कर पाना, मनुष्य के बस में नहीं है निर्णय कर पाना कि मैं कौन से मार्ग पर चलूं। तो फिर किसके बस में होगा? मनुष्य के बस में नहीं तो फिर किसके बस में होगा? ध्यान दीजिए, सर्वथा संसार की व्याधाओं को, परिस्थितियों को, संसार की जलन को देखता सुनता हुआ एक बार ये तो स्मरण आ जाना चाहिए था ना कि मैं दुखी क्यों हो रहा हूं, इसके पीछे कारण क्या है? क्या मेरा जीवन दुख के लिए ही बना है? मैं दुखी होता होता मर जाऊंगा? कोई अवस्था ऐसी है जो मैं शांति और सुख का अनुभव कर सकूं? दूसरों को देखता हूं, मुझे क्या करना चाहिए? संसार में जब तक उसकी दृष्टि बहिर्मुख होती रहेगी, वह गंतव्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा, निर्णय नहीं कर पाएगा। सबसे पहले उसे थोड़ा सा अंतर्मुख हो, मैं दुखी हूं यह तो स्वीकार करना चाहिए, मैं परेशान हूं, मैं जल रहा हूं, भवारण्य में संसार के इस भव समुद्र में जल रहा हूं, मैं कब तक जलता रहूंगा? ऐसा विचार करके थोड़ा सा अंतर्मुख तो हो जाओ, थोड़ा सा नमस्कार तो करो, थोड़ा सा झुको तो सही कि तुम्हें कोई ड्राइव कर रहा है, तुम कुछ अलग वस्तु हो, तुम जो सोच रहे हो वस्तु नहीं हो, थोड़ी सी तो आत्मा की तरफ झुको, थोड़े से अपने से पूछो कि अंदर बैठे हुए तुम क्या चाहते हो, ऐसे ही जलते रहे हम क्या? अंतर्मुख थोड़ा सा व्यक्ति होगा तो उसके अंदर श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर असंयत इंद्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति। कौन सी शांति? शांति नहीं, परम शांति। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में परम शांति की प्राप्ति होती है, और जैसे ही अपनी तरफ थोड़ा अंतर्मुख होगे और विनीत भाव से अपनी आत्मा को निवेदन करोगे, मैं क्या करूं, अंदर चल रही हो तुम भी, मुझे ड्राइव कर रही हो, हम आगे से तड़फ रहे हैं और ऊपर से कह रहे हैं कि हम कुछ हैं। अंतर्मुख होता हुआ व्यक्ति के सामने श्रद्धा उत्पन्न होती है, और श्रद्धा आपको गुरु, साधु और शास्त्र से मुलाकात करा देती है। कौन कराएगी? गुरु, साधु, शास्त्र। गुरु, साधु, शास्त्र परिपूर्ण अवस्था में आपके सामने हैं, लेकिन आपके अंदर श्रद्धा ही नहीं है आपके अंदर। तो क्या गुरु साधु शास्त्र का जो लाभ हमें प्राप्त होना चाहिए था वो प्राप्त हो सकता है? श्रद्धावान लभते ज्ञान। तो उस समय ये सारी अवस्थाएं, अब यहां पर बहुत सुंदर प्रकरण उत्पन्न हुआ है। यहां पर जब ये बात कही तो पूरा का पूरा प्रहलाद महाराज का चरित्र नाराजी ने श्रवण कराया और उसका पहला श्लोक है, समा प्रिया सुहृद ब्रह्मन भूतानाम भगवान स्वयं इंद्रश्यार्थे कथम दैत्यान बधित विषमो यथा। 10 अध्याय में आप आनंद से भर चुके हैं, परिपूर्ण कार्य आपका हो चुका है, आपने कुछ नहीं पढ़ा है, क्या कुछ पढ़ना चाहते हो? अरे कुछ नहीं पढ़ा, कुछ पढ़ना चाहते हो? आप प्रहलाद महाराज के इन 10 अध्यायों को अच्छी तरह से पढ़ लो, आपने सब कुछ पढ़ लिया। वह धर्मराज यहां पर प्रश्न करते हैं, भगवत श्रोतुम इच्छामि नृणाम धर्म सनातनम वर्णाश्रमाचार्युतम यत् पुमान विन्द्यते परम। भगवान श्रोतुम इच्छामि, मैं इच्छा रखता हूं, काय की इच्छा? सुनने की। क्या सुनना चाहते हो? नृणाम धर्म सनातनम, मनुष्यों का सनातन धर्म सुनना चाहते हैं। कौन सा धर्म? वर्णाश्रमाचार युतम, वर्ण और आश्रम से संलग्न धर्म को सुनना चाहता हूं। क्यों सुनना चाहते हो? यत् पुमान विन्द्यते परम, जिसको पाकर के पुमान मनुष्य परम की प्राप्ति कर लेता है। वर्ण और आश्रम, इसके लिए 2 मार्ग हैं। या तो आपके अंदर अटूट श्रद्धा और कहीं इधर उधर न जाने की इच्छा, तो मार्ग ये, आप इसको, इससे आगे निकलने के प्रयत्न हो सकते हैं और बुद्धि रखते हैं क्या क्यों कैसे, बुद्धि का प्रयोग भी है, बुद्धि का विलास भी करना चाहते हैं। हमने कुछ समझा है, हम कुछ समझ रहे हैं, ऐसी बुद्धि रखना चाहते हैं, तो फिर इस मार्ग को अपनाना ही पड़ेगा। धर्म सनातनम, धर्म सनातनम, सनातन धर्म। धर्म कौन सा? सनातन, अनब्रेकेबल, जिसकी तेल की धारा कभी टूटे ना, निरंतर बहने वाली बात। धर्म किसको कहते हैं? जो धारण किया जाए, जिसका मौलिक गुण हो, जीव का मौलिक गुण, वस्तु का मौलिक गुण, अग्नि का मौलिक गुण, दाह का शक्ति और प्रकाश। अग्नि का मौलिक गुण क्या है? जलाना और प्रकाश प्रदान करना। मनुष्य का मौलिक गुण क्या है? जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर। बहुत ऊंची बात है, बहुत ऊंची बात है। यहां तक अगर सामान्य व्यक्ति है ना, तो कह सकता है, समझने में बहुत टाइम लग जाएगा। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास तक पहुंचने के लिए आपको इन सारी सीढ़ियों से निकल करके आप पहुंच सकते हैं, अनायास नहीं है। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, ये तो हम समझ गए, गाने लग गए, लेकिन नीचे जो भरा हुआ है उसकी सफाई नहीं कर पाए तो वो धारण करने में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नीचे की जो खदबदाहट है ना, नीचे का जो उबलने का तरीका है, या नीचे जो मरा हुआ पशु पड़ा हुआ है ना तालाब में, कूप में, जो स्वान कुत्ता मरा हुआ पड़ा हुआ, ऊपर से तुम कितना भी सेंट छिड़कते रहना, लेकिन वो अपनी गंध को छोड़ेगा नहीं। इसीलिए शास्त्र में ये बातें बहुत बढ़िया तरीके से समझाई गई हैं। यह धर्मराज जो यहां पर बोल रहे हैं नारद जी से, नारद जी से ज्ञान प्राप्त हुआ, नारद जी ने समझाया, और समझाने के बाद में यही धर्मराज जी युधिष्ठिर महाराज समझने के लिए पितामह भीष्म के पास गए थे। पितामह भीष्म के पास जाकर के खड़े हो गए, आंखों में आंसू थे, मेरे कारण इतने लोग मारे गए, युधिष्ठिर युधिष्ठिर ना होता तो इस महाभारत का कलंक मुझ पर नहीं लगता। अगर मैं था ना इसलिए तो मैं लड़ा, नहीं मैं नहीं होता रहा तो मुझे क्यों होता। ये व्यथा थी, खूब समझाया भगवान ने, खूब समझाया परमात्मा ने, खूब समझाया कृष्ण ने, खूब समझाया, लेकिन आप कह तो रहे हो मैं संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूं। भगवान भी सोचते हैं, बड़े चतुर हैं ये, इनकी चाट को, इनकी चतुराई को तो बस ये कहना ही क्या है। आज धर्मात्मा को महात्मा से उपदेश दिलाएंगे, और यही विषय लेकर के जब पहुंचे युद्ध क्षेत्र में, नमस्कार किया, केशव पैरों के तरफ खड़े हुए हैं, दाएं बाएं स्त्री और पांडव खड़े हुए हैं, पितामह ने जैसे ही दृष्टि खोली कृष्ण पर पड़ी, और पढ़ने के साथ में मुंह से निकल गया, केशव मैं जानता था तुम जरूर आओगे, आ गए तुम आ गए। पितामह, पांडव भी आए, हाँ पांडव भी आए, देखा पितामह कुल बधुएं भी आई, अच्छा, दोनों तरफ देख करके संतुष्ट हुए, ध्यान लगाए, पितामह आज युधिष्ठिर आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, राज्य प्राप्त हुआ, इस राज्य को कैसे चलाएंगे, प्रजा का संरक्षण कैसे करेंगे, किस प्रकार कर्म को करते हुए इस कर्म के दलदल से कैसे निकलेंगे, करना तो पड़ेगा। नियतम कुरु कर्म तुम, कर्म जायो ही अकर्मण, शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धियत अकर्मणा। दो हाथ दिए हैं, दो पैर दिए हैं, पूछो पूरा का पूरा पंच समूह दे दिया है, सब कुछ कार्य करने के लिए सुनने की, देखने की, खाने की, छूने की सारी क्षमताएं दे दी हैं, और ऊपर से बोलो नहीं कुछ नहीं करोगे, संभव कैसे हो सकता है। अगर कुछ नहीं करोगे यही कहलवाना चाहते थे तो इस तरह का बनाया क्यों था आपने। अच्छा भगवान कहते कुछ करो, बहुत कुछ करो, लेकिन अपना बचाव कर लो, बच जाओ इस अग्नि से, करते हुए भी अग्नि से बच जाओ, ये भगवान ने शिक्षा दी भगवद गीता में। पितामह भीष्म ने विधिवत तरीके के साथ में दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग स स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगता। समय तो सीमित था, तो दान धर्म क्या है, राज धर्म क्या है, भगवत धर्म क्या है, स्त्री धर्म क्या है, सबका समास कहीं पर संक्षेप में वर्णन किया तो कहीं विस्तार से वर्णन किया। इस संसार में वर्णाश्रम के विषय में जानना बहुत जरूरी है, और ध्यान दीजिए वर्णाश्रम के विषय में जानना भी जरूरी है, शास्त्रों में हम पढ़ते भी हैं वर्ण और आश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, वर्ण ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी, आश्रम यत् पुमान विन्दते परम, इस वर्णाश्रम से परम की प्राप्ति होती है। चार वर्ण और चार आश्रम से परम की प्राप्ति हो, कौन सी विधि है, विधि यह है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना स्तर, अपनी मानसिक चेतना का स्तर अलग अलग है। नाहम निंदे न दस्तोमी स्वभाव विषमम जनम, मैं किसी की निंदा नहीं करता, मैं किसी की स्तुति नहीं करता। क्यों नहीं करते, निंदा करने वाले की तो निंदा करो ना, स्तुति करने वाले की स्तुति तो करो, नहीं मैं नहीं करता। ना हम निंदे नतस्तोमी स्वभाव विषमम जन्म एतेषां श्रेय आशा से औत काम्य महात्मनी, मैं सबसे अपनी नजरों को हटा करके अपनी आत्मा में रमण करता हूं, मस्त रहता हूं, बात रस पीता हूं। तुम निंदा स्तुति क्यों नहीं करते, निंदा स्तुति इसलिए नहीं करते कि प्रकृति के तीन गुण सतोगुण रजोगुण और सतोगुण से कैसी आशाएं की जाती हैं? ज्ञान और सुख की। सतोगुण की आशाएं, सतोगुण क्या देता है? ज्ञान और सुख। रजोगुण क्लेश और परिश्रम, क्लेश और तमोगुण मूढ़ता, निद्रा, आलस्य, प्रमाद, और इनके बीच में मिली हुई जुली हुई अवस्थाओं के असंख्य अवस्थाओं से चेतनाओं का निर्माण होता है। एक व्यक्ति तमोगुणी है, सतोगुणी व्यक्ति के बीच में रहना चालू कर दिया तो उसके अंदर कुछ कुछ गुण आना चालू हो जाते हैं कि भाई एक व्यक्ति बहुत कुछ खाता पीता है लेकिन जहां वो सेवा कर रहा है वहां खाना पीना कुछ नहीं है, तो फिर धीरे धीरे उसकी कंट्रोल होता है। एक व्यक्ति खाता पीता कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा है, लेकिन लोभ के कारण, धन के कारण ऐसे व्यक्ति की गुलामी करनी पड़ रही नीच व्यक्ति की कि सारे के सारे दुर्गुण आ जाते हैं, तो विचार करना चाहिए। तो यहां पर इस श्लोक का भाव क्या है, इस श्लोक की तरफ थोड़ा सा हम चलते हैं। नाभिनंदे ध्रुव मृत्यु, मैं अभिनंदन नहीं करता हूं मृत्यु का और न मैं मृत्यु से डरता हूं, न मैं अभिनंदन करता हूं न मैं डरता हूं। अध्रुवम बा असि जीवितम, और इस जीवन से भी मैं निंदा स्तुति नहीं करता हूं, जो जीवन जी रहा हूं इसकी भी निंदा स्तुति नहीं कर रहा हूं, मैं मृत्यु की भी निंदा स्तुति नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहे? कालम परम प्रतीक्षेत, मैं परम काल की प्रतीक्षा करता हूं। क्या करता हूं? परम काल की प्रतीक्षा करता हूं। भूतानाम प्रभव अपयम, ये काल उसकी प्रतीक्षा करता हूं जिसके द्वारा सृष्टि उत्पन्न होती है, जीव जगत उत्पन्न होते हैं, सृष्टि उत्पन्न होती है, और जिसके द्वारा सृष्टि विलय को प्राप्त होती है। ये क्लास इतनी सुंदर है कहा जा सकता है, शिला प्रभुपाद जी ने हमको बहुत पिलाया है, अमृत पिलाया है। अरे इतना तो जान लो, इतना जानो, क्या जाने? ईश्वर क्या जाने? जीव आगे भूल गए क्या? हैं हैं और बोला करो। ईश्वर, जीव, काल, प्रकृति और कर्म। ईश्वर, जीव, काल, प्रकृति और कर्म। ध्यान दीजिए, बद्ध अवस्था में काल के चंगुल में फंस गए। काल के चंगुल में फंस जाने के कारण और फंसे क्यों, यह विषय अलग आएगा। फंसे आप अपने आप, मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कोई दूसरा कारण नहीं है, और भगवान तो अपने ऊपर बिल्कुल नहीं लेते, भगवान अपनी तरफ तो बिल्कुल नहीं आने देते कि तुम ऐसी अवस्था को प्राप्त हुए भगवान तुम्हारे कारण। भगवान नहीं कहते नहीं मेरा नाम मत ले। ना दत्ते कश्चित पापम नैवम सुकृतिम विभो अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यंते जंतवा। ना दत्ते कश्चित पापम, मैं किसी के पापों को ग्रहण नहीं करता हूं, मैं किसी के पुण्यों को ग्रहण नहीं करता हूं। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञान के द्वारा जिसका ज्ञान ढक गया है, तेन मुह्यंते जंतवा, उसके कारण सारे प्राणी मोहित हो रहे हैं। समझ में बात आ गई? आपके पास में दीपक है, आपके पास सूर्य दिखाई दे रहा है, दीपक भी है, जहां सूर्य होगा वहां अंधकार नहीं होगा, दीपक होगा वहां अंधकार नहीं होगा, लेकिन एक सीमा ऐसी आ जाती है कि गहन अंधकार में दीपक का भी प्रकाश दिखाई नहीं देता। दीपक रखे तो बहुत गहन अंधकार में तो दीपक भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि अंधकार उसको इतना घेर लेता है कि उसके प्रकाश को आवृत कर देता है। बस इतनी सी बात समझ में आ जाए तो जीवात्मा का सिर्फ इतना सा खेल है। नित्य मुक्त, निर्गुण, निराकार, आनंद से भरा हुआ सविशेष आत्मा, और इस अंधकार के चंगुल में फंस गया। क्यों फंस गया? और फिर वो कार्य कर रहा है तो वो कह रहा है कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, तो भगवान भी कह रहे हैं हाँ तू ही तो कर रहा है, किसी को तूने धक्का मारा, उसने तुझे धक्का मारा, भगवान कहते हैं हमने इसमें क्या करें, धक्का तुमने मारा, तुमने धक्का खाया। तुमने किसी को पानी पिलाया, उसने तुझे पानी पिला दिया। तुमने किसी को चाकू मारा, उसने तुम्हें चाकू मार दिया। हम क्या करें? नावत्ते कश्चित पापम नैवम सुकृतिम विभो अज्ञाने ना व्रतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ते जन्तवा। हे प्रभु, ये सारी बातें तो हम समझ गए, हमारे कल्याण की कुछ बात करो ना, हम कैसे निकलें? ज्ञानेन तु यज्ञानम, ज्ञानेन तु, ज्ञान के द्वारा जिन्होंने अज्ञान का नाश कर दिया है, ज्ञानेन तु यज्ञानम येषां नाशित आत्मना, ज्ञानेन तु यज्ञानम येषां नाशित तेषां आदित्य वद ज्ञानम प्रकाशति तत्परः। जैसे ही ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश हुआ, अपनी स्थिति में आया और प्रकाश फैल गया सूर्य के समान, बस मुक्त आत्मा को, अमल आत्मा को, महात्मा को, आत्मा राम को, फिर कौन रोकने वाला है? कोई चंगुल में फंसा सकता है? चंगुल में जीव स्वयं फंसा है। और आप ध्यान करिए, मैंने आपको पुनः बता रहा हूं, ईश्वर, जीव, काल, प्रकृति, कर्म, कर्म का कोई अस्तित्व नहीं है, और कर्म ही सारे जीवों को परेशान और बांधे हुए पड़ा है। जैसे ज्ञान उत्पन्न होता है, कर्म थरथरा करके कप जाता है, निकल जाता है, कर्म प्रकृति में विलीन जाता है, प्रकृति जाती है काल में, और काल जाकर के खड़ा हो जाता है, क्योंकि जीवात्मा जो है ना, जड़ और चेतन का मिश्रण है, जड़ और चेतन है ना, तटस्था है, विभिन्नांश है। तो वह जो फंस गया है, उसका जो जड़ तत्व है, ज्ञान उत्पन्न होने पर वो जड़ तत्व विलीन हो जाता है। इसलिए संसार में पांच वस्तुएं कहीं दिखाई नहीं देती हैं ज्ञानियों के लिए, अज्ञानियों के लिए होती हैं। वस्तु तो दो ही है। अब ज्ञान की अवस्थाएं बहुत ऊपर जाती हैं, बदंति तत्व विदस्त तत्वम यद ज्ञानमय अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति। ज्ञानी की बात हमने कही है, ज्ञानी का लक्ष्य होता है प्रकृति और पुरुष। ज्ञानी का लक्ष्य क्या है? प्रकृति और पुरुष का विवेचन करके प्रकृति से, प्रकृति को पुरुष से अलग करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। यह सांख्य दर्शन का प्रथम अवस्था है। इससे बात नहीं बनती, शांति तो मिल जाएगी लेकिन रोग कटने वाला नहीं है। रोगा चित्त वृत्ति निरोधा। योग में जब आप जानोगे तब जुड़ोगे, किससे जुड़ोगे? प्रथम अवस्था तो जुड़ने के लिए हमारे पास ये बैठी है आत्मा। आत्मा की समझ आ गई, सविशेष आत्मा की समझ आ गई, तब आप परमात्मा की तरफ झुक जाओगे और यहां पर बाधा खत्म हो चुकी है। ये अवस्थाएं आपने श्रवण करी, रोज क्लास में हम श्रवण करते हैं, आपने श्रवण किया। स्त्री धर्म के विषय में कितना कितना बताया गया, बहुत श्रवण किया। ब्रह्मचारी के लिए बहुत कुछ बताया गया, वानप्रस्थ के लिए बहुत कुछ बताया गया, ये दाने उठा करके खाओ, ये नहीं खाओगे, ये नहीं पहनोगे, सन्यासी के लिए ये पहनो, ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो, सारी बातों को आपने श्रवण किया। और श्रवण करते हुए आप श्रवण तो कर रहे हैं लेकिन महसूस एक बात करते हुए चले जा रहे हैं ना, कि इतना कष्ट साध्य अवस्था क्यों, इतना कष्ट क्यों उठाया जाए, इतना कष्ट क्यों लिया जाए। मन कर रहा है, सुना तो जा रहा है, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, ऐसे मन करता है, जो हमारे पास है तो क्यों नहीं खा सकते। ध्यान दीजिए, आप वस्तु स्थिति का एक पहलू समझ पाए हैं, वस्तु स्थिति का एक ही पहलू समझ पाए हैं, उसके दूसरे पहलू को समझ करके आप स्वयं कहेंगे कि शास्त्र में जो कुछ कहा जा रहा है, भागवत में जो कुछ कहा जा रहा है, पूर्णतः सिद्ध और हमारे लिए कल्याणकारी है। ऋषभदेव महाराज का आप चरित्र देखते हैं, किस प्रकार पड़े हुए हैं। अन्य ऋषियों के भी आप चरित्र देखते हैं, क्यों? इसीलिए कि संसार में जब तक आप रहेंगे तो कर्म संभव होगा, कर्म होगा तो कर्म के पीछे क्या लग जाएगा? कर्म का फल लगेगा तो भोक्ता बनोगे। जो करता है वही भोक्ता है, जो करता नहीं है वह भोक्ता नहीं है। और सारे के सारे प्राणी 84 लाख योनियों में बद्ध हैं, आबद्ध हैं, वो कुछ करने के लायक नहीं है। 84 लाख योनियों में कुछ नहीं कर सकते, चार ही काम कर सकते, आहार निद्रा भय मैथुनम च। क्या कर सकते हैं? आहार निद्रा भय मैथुनम च समान एतत् पशुभि नराणाम। धर्म से एको अधिको विशेषो धर्मेन हीना पशुभि समाना, तो धर्म की तो बात कही जा रही है। धर्म से हीन अगर मनुष्य है तो वो क्या कहा जाएगा? धर्म से हीन मनुष्य है तो क्या कहा जाएगा? पशु। और धर्म की प्रथम अवस्था सनातन जो आती है वर्णाश्रमाचार युतम, वर्णाश्रमाचार यत् पुमान विन्दते परम, जिससे मनुष्य अपने कल्याण को प्राप्त होता है। तो यहां पर इतने कष्टों को सहन करने का मतलब यह बनता है कि आप इसी समय, आपके लिए नहीं, मैं अपने लिए बोल रहा हूं, मैं शास्त्रों की बात बता रहा हूं, इसी समय एकदम सामान्य अवस्था को प्राप्त हो। जो अब तक हुआ, जो हो रहा है, मुझे नहीं पता किधर फ्लो जा रहा है या कितन पत्ता गिरेगा, कहां से पत्ता टूटेगा, कहां पत्ता गिरेगा, कौन सी हवा ले जाएगी, मेरे बस का राग नहीं है। मेरे बस का तो सिर्फ एक राग रह गया है, क्या? हरि शरणम, हरि शरणम। और अभी इसी समय अपने आप को कर देते हैं तो और गहन जाप भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करने से, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। इसके अलावा और कुछ जानते हो? नहीं। और कुछ जानना चाहते हो? नहीं। न जानते हैं और न जानना चाहते हैं। अब रही बात ये कि सुंदर खाना चाहते हो, बढ़िया खाना चाहते हो, बढ़िया पहनना चाहते हो, बढ़िया सुनना चाहते हो, बढ़िया देखना चाहते हो, बढ़िया छूना चाहते हो, तो तुम्हें उद्यम करना पड़ेगा। तुम्हें क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। और करोगे उद्यम तो कर्म के साथ में प्रतिक्रिया लगी हुई है, एक्शन के साथ में रिएक्शन लगा हुआ है। कर्म करोगे तो फल बनेगा। आज के बाद में कोई कर्म नहीं करूंगा। आप ध्यान दीजिए, ये जो बातें कही जा रही हैं, इन बातों को गहराई से अगर समझना चाहते हो तो भगवत गीता का 5वां अध्याय, भगवत गीता का, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण, हे कृष्ण तुम संन्यास की बात करते हो फिर कहते हो कि युद्ध करो। पुनर्योगम च संससी यस्रे यद योरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, इसमें मेरे लिए कल्याणकारी कार्य हो वो मुझे बताओ। बड़ा सुंदर विवेचन हुआ है इस अध्याय को समझने के बाद में। जो ये श्लोक का भाव है पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है। सन्यासी को, सन्यासी लोगों, वर्ण और आश्रम में सबसे अच्छी उत्तम अवस्था जो पहुंच चुकी है वो सन्यासी की है। वानप्रस्थी की देखो कितनी अवस्था, कितना कठिन परिश्रम है। सन्यास का अर्थ यह होता है कि जीवन की किसी भी प्रकार से इस शरीर अथवा इस मस्तिष्क को अथवा अंतःकरण पर के द्वारा, न तो शरीर के स्तर पर, न अंतःकरण के स्तर पर, और न अस्तित्व के स्तर पर मैं किसी पर अवलंबित तो नहीं होऊंगा। न तो अपने अस्तित्व, अहम, अस्मिता, मैं, पुरुष, आत्मा, कर्ता, इस प्रकार के भावों को डुबोता हुआ मैं किसी पर अवलंबित तो, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के द्वारा मैं किसी पर अवलंबित, शरीर की इंद्रियां और पंच महाभूतों के द्वारा भी मैं किसी पर अवलंबित, जिसने यह दिया है वह स्वयं संभाले। मुझे भूख लगेगी, अगर हाथ ये कहेंगे कि दर्द पेट में हो रहा है, कुछ चाहिए, कुछ दिखाई देगा तो डाल दूंगा, और नहीं दिखाई दे रहा है तो तू जानो तेरा काम जान। पीछे पीछे हरी फिरे क्यों भूखे नहीं सो जाए, फिर तो चिंता उसको करनी पड़ती है। और जिस समय आप इस अवस्था की कष्ट साध्य अवस्था अवश्य प्राप्त होती है, इस अवस्था के बाद में जब आपका मन और चित्त भगवान के पवित्र नामों में लगा हुआ है तो उस समय ये छोटी मोटी अवस्था महसूस ही नहीं है। कभी कोई आपको इतना प्राप्त होगा, इतना प्राप्त होगा, और अगर बेईमानी से आपने इसको लेना कर दिया तो वहीं पर रुकावट पैदा हो जाएगी। आपके सामने आ गई खीर, खीर बड़ी स्वादिष्ट लगी तो दो दोने और फालतू पी लिए, अब ये खीर प्रसाद नहीं रह सकता, ये भोग बन गया। किसी भी चीज में आसक्ति होने पर भोग की प्राप्ति हो जाती है। तो क्या होता है इस अवस्था की प्राप्ति को करने के लिए आनंद, इसको बखेरा गया, इसी भाव का आनंद लिया जड़ भरत महाराज ने। जड़ भरत महाराज जानते थे संसार में सफल हो गए, संसार में अगर बुद्धिमान बनोगे ना तो फिर हमें हिरण बनना पड़ेगा, इसीलिए बिल्कुल मूड अवस्था में। संसार में छुपने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यह है मौन। क्या कर दो? वाणी से मौन, क्रिया से मौन, हर अवस्था से मौन, और उसके बाद में अंदर से परम चैतन्य, अंदर से परम चैतन्य, और बाहर से देख करके आदमी घृणा कर जाए तुमसे, अरे वो पड़ा हुआ है, अरे गंदा पड़ा हुआ है, अरे उसके पास क्या जाओगे, अरे उससे मत बात करो, आपको कितना ठाकुर जी बचा रहे हैं, आपके भजन में कोई बाधा डालने वाला नहीं है। और बाहर से अगर आप बहुत कुशल बनने की कोशिश करोगे, अंदर कुछ नहीं है, तो सारे जीवन तड़पते तड़पते मर जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यस्यास्ति भक्ति भगवत्य किंचना सर्वई गुणैस्तत्र समासते शुरा हराव भक्तस्य कुतो महद गुणा मनोरथे नासति धावतो वही। यस्यास्ति भक्ति भगवत्य किंचना, भगवान के लिए निष्किंचन भक्ति है, उसका घाटा कौन सा हो गया है, उसे कौन सी हानि हो गई है, उसे उसने कौन सा लाभ प्राप्त कर लिया जो संसार में सफल कह रहा है अपने आप को, मेरे पास ये है वो है, वह दर दर की ठोकरें खा करके धन के पीछे दौड़ता रहेगा, पुनरपि वो जन्म मृत्यु के चक्र में चला जाएगा। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्य, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्य निवसत हृदय शाम श्री हरेर भक्ति का। वह निर्धन बहुत बड़े भाग्यशाली हैं जिनके हृदय में भगवान की एकांकी भक्ति निवास करती है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्य निवसत हृदय शाम श्री हरेर भक्ति रेखा हरेरपि निज लोकम सर्वथा दो विहाय। भगवान अपने वैकुंठ को छोड़ करके उसके हृदय में जाकर के निवास करते हैं। भगवान के विस्तार के विषय में, भगवान के विस्तार के विषय में बुद्धि और मन की सीमा नहीं है। वह भगवान उस भक्त के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। अहम भक्त पराधीनो, भगवान बोलते हैं हे स्वतंत्र तुझे, ये वह ये ब्राह्मण, ये भक्त मेरे, ये स्वतंत्र है, जो जैसा करें वैसा हमें नाचना पड़ता है। तो ये संबंध भगवान के साथ है। कुल मिलाकर के बात का सार यहां पर ये है कि नाभिनंदित मृत्यु नाम की कोई वस्तु नहीं है, जीवन नाम की कोई वस्तु नहीं है, वस्तु है तो काल है आपके लिए। क्या वस्तु है? काल है। आप ध्यान दीजिए, आप स्वप्न देखते हैं, जो जीवन जिया जा रहा है अभी आपके सामने, हमारे सामने तीन अवस्थाओं में प्राप्त होता है, जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में और सुषुप्ति अवस्था में। यह जो पुरुष बैठा हुआ है ना, जिसने मान लिया है ये मेरा शरीर है, वह क्या भाव करता है कि सो गया हूं। सोने पर उसके पंच महाभूत और इंद्रियां शांत होती हैं, लय को प्राप्त हो जाती हैं। और सोता हुआ लय को प्राप्त हो रहा है लेकिन चेतना क्रियाशील हो रही है, उस समय अवस्था प्राप्त होती है स्वप्न की। कौन सी अवस्था? स्वप्न की। शरीर पड़ा हुआ है लेकिन चेतना क्रियाशील है, स्वप्न की अवस्था। शरीर भी उठा हुआ है, चेतना भी उठी हुई है और अहम भी उठा हुआ है, ये जागृत अवस्था है। और सारी की सारी अवस्था मिथ्या है और ये हमको स्वीकार करनी पड़ेगी, जन्म जन्मांतर तक स्वीकार करनी पड़ेगी। अगर निकलना चाहते हो तो यह है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यही एक मार्ग है। इसीलिए इस मार्ग का हम अवलंबन करें, स्वागत करें। और ये जो बातें यहां बताई गई, कालम प्रतीक्षण, काल की प्रतीक्षा करें। नारद जी दासी पुत्र थे, वह नारद जी अपना बताते हैं कि मैंने कैसे प्रतीक्षा करी है, मैंने काल की कैसे प्रतीक्षा करी है, बताया नारद जी ने व्यासदेव को बताया। एवं कृष्ण मतेर ब्रह्मन न सत्यामलात्मनम काल प्रादुर्भूत काले तड़ित सौदा मिनी यथा। मैं क्या कर रहा था? भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण कर रहा था, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 राम। नामानि अनंतस्य, अनंत के नामों का मैं उच्चारण कर रहा था। नामानि अनंतस्य हता त्रिपा पठन गुह्यान भद्राण कृतान संस्मरण गाम पर्यटन तुष्ट मना गतस प्रहा कालम प्रतिक्षण। मैं क्या कर रहा था? कालम प्रतिक्षण कैसे कर रहा था? विमदा विमत्सरा, मेरे अंदर कोई मद नहीं था, कोई मत्सर नहीं था। शरीर जिसने दिया था वही विश्राम कराएगा। काल के द्वारा शरीर प्राप्त हुआ है, काल विश्राम कराएगा। मुझे न तो इसको विश्राम कराने की जरूरत है, न कोई जरूरत नहीं। भूखा है तो सामने कुछ होगा तो डाल दिया जाएगा, और उसमें कोई प्रयत्न नहीं। यहां तक कि किसी का रखा हुआ है सन्यासी के, मैं आपने बताया सिलोक्षण की क्रिया है, बहुत सारी क्रियाओं का वर्णन किया गया है। यहां तक रित अमृत प्रमत क्रियाएं जो बताई गई हैं उसमें यही है कि यद्राक्षा लाभ संतुष्ट द्वंदाती तो विमसर समसिद्धाव सिद्धो कृत्वापि न निवध्यते। भक्ति के अंतर्गत आप प्रोग्रेस कर चुके हैं, भक्ति को जान चुके हैं, तो मेरे प्यारे सब कुछ करिए, सब कुछ करिए, बढ़िया करिए, लेकिन सब कुछ करते हुए भी मुक्त रहिए कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं तो प्रभु की सेवा कर रहा हूं। सभी वस्तुओं का उपयोग करिए, खूब करिए, बड़े ऊंचे स्तर पर करिए। जैसे जैसे संसार के लोग सत्ता कर्मण्य अविद्वांशो, अविद्वान लोग जो संसार के महामहिम बनकर के बैठे हुए हैं, उनसे ऊपर करिए। सत्ता कर्मण्य अविद्वांशो यथा कुर्वंत भारता, हे भारत, जिस प्रकार जो आसक्त होकर के जो अज्ञानी जन कार्य करते हैं, सत्ता कर्मण्य अविद्वांशो यथा कुर्वंत भारता कुर्याय विद्वांस तथा शक्त, विद्वान जन भी वैसे ही कार्य करें, मसक्त आशक्त होकर के कर्म नहीं करेंगे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जीवन बहुत ही रत्न है, बहुत ही सुंदर वस्तु है, और हमारे पास में गुरु साधु शास्त्र हैं, हम भरे पूरे हुए हैं। हमें तीन चीजों से बहुत दूर रहना चाहिए, आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, व्यक्ति वस्तु स्थान में। क्या नहीं होना चाहिए? अहम ममेति, क्या नहीं होना चाहिए? अहम नहीं होना चाहिए, मेरा है, मैं हूं और मेरा, मैं हूं और मेरा से मुक्त रहिए। सब कुछ तेरा ही तेरा है, सबे भूमि गोपाल की जिया था, जाओ आनंद लीजिए। तो जीवन आनंद के लिए है, इसमें कोई दुख का कोई शेष नहीं है, लेकिन जीवन दुख में डूबा हुआ है। वह समझिए अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुयंती जंतवा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 राम।